بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے اس خطبے کے دوران ہم ایک موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہم پر مصیبتیں یا مسائل جو آتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں. کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو اس سے واسطہ ہے اور کوئی بھی آدمی تکلیف سے پریشانی سے مصیبت سے فارغ نہیں ہے. غالب کا بہت مشہور شعر ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. تو زندگی کی قید اور اس میں غم کی بیڑیاں یہ پڑی، یعنی انسان جب تک کہ وہ انسان ہے وہ تکلیف سے پریشانی سے مصیبت سے مستغنی نہیں. تو پہلے کچھ بنیادی باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں اس حوالے سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو خلق کیا ہے وہ آزمائش و ابتلاء کے اصول پہ خلق کیا ہے. ہمارے علماء نے بات لکھی ہے کہ تین عالم ہیں. ایک عالم وہ ہے کہ جس میں راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، چین ہی چین ہے، کسی تکلیف کا وہاں گزر نہیں ہے، وہ جنت ہے. اور ایک وہ عالم ہے کہ جہاں دکھ ہی دکھ ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، کرب ہی کرب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، وہ جہنم. اور ایک وہ عالم ہے کہ جس میں غم اور راحت، خوشی اور تکلیف یہ گلے ملے، گڈ مٹ، وہ دنیا ہے جس میں ہم جیتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو خلق کیا ہے وہ استحقاق کی بنیاد پہ خلق نہیں کیا. جہاں انسانوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ وہ آزمائش کی قانون کے تحت. آخرت ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں استحقاق ہے، لیکن استحقاق کا لفظ بھی ہم دھیان سے استعمال کریں گے. خاص طور پہ جنت جو ہے وہ کسی کا استحقاق نہیں ہے. جنت کے بارے میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت کو کوالیفائی کرنا اس کے لیے ایک استحقاق درکار ہے. جنت میں داخلہ محض عمل کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو. تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کو بھی نہیں؟ تو کہا کہ ہاں مجھے بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ بفضل منہ ورحمہ، ہاں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ دے. تو وہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ اچھے عمل کریں گے، ایمان و عمل صالح، وہ ابدی راحتیں اور سکون پائیں گے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کی سرکشی میں زندگی بسر کرتے رہے، وہ تکلیف اور ضرر میں رہیں گے. لیکن دنیا آزمائش پر ہے. سورہ ملک کی مشہور آیت ہے، دوسری آیت ہے اس کی کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو جو خلق کیا ہے وہ اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے، تاکہ تمہاری جانچ کرے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ آزمائش اور ابتلاء اس دنیا میں آئے گی. یہ اور بات ہے کہ یہ آزمائش دونوں طرح سے آتی ہے. اردو میں عام طور پہ ہمارے ہاں ابتلاء اور آزمائش کا لفظ نیگیٹو یا سلبی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں جو ابتلاء کا لفظ ہے وہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. اچھے حالات، راحت، آرام، سکون، مالداری، عزت و اقتدار، इसके लिए भी इब्तिलाक लफ्ज इस्तेमाल होता है, और तकलीफ परेशानी इफलास इसके लिए भी इब्तिलाक लफ्ज इस्तेमाल होता है। वनबलूकुम बिशर्री वल खैर फितना, हम तुम्हें जांचेंगे कभी अच्छे हालात के जरिए कभी बुरे हालात के जरिए, और दोनों चीजें क्या है, ये फितना है, आजमाइश है, एक कसौटी। तो पहली बात यह कि आजमाइश आकर रहेगी, इससे किसी को भी जो है रुस्तगारी नहीं है। और फिर खास तौर पर अल्लाह ताला के जो मोमिन बंदे हैं, अल्लाह पर ईमान लाने वाले बंदे हैं, उनके बारे में भी ये बात कही गई। सहाबा किराम की जमात से ये बात कही गई इब्तिदान, और उनके ज़ैल में हम सबसे ये बात कही गई कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, और हम जरूर भी जरूर तुम्हें जांचेंगे थोड़े से खौफ से, थोड़ी सी भूख से, और माल और औलाद और फसलें और काश उनकी थोड़े से नुकसान से। तो ये लाजमन अल्लाह ताला जांचते। अगली बात ये है कि जो भी तकलीफ इंसान पर आती है, जो भी इब्तला इंसान पर आती है, ये हमारा यकीन है या यकीन होना चाहिए कि वो हमारी मकदरत और हमारी वसत से बढ़कर नहीं आती। कुरान मजीद ने यह बात भी वाज़े की है कि ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसाहा, और एक जगह फरमाया कि ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला मा आता, कि अल्लाह किसी जान पर कोई तकलीफ नहीं डालते मगर उतनी ही जितनी उसकी वसत में है, जितनी उसकी मकदरत में है। इसीलिए जो आपको मालूम है ना कि हमारे यहाँ खुदकुशी को जो हराम कहा जाता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त बातें उन लोगों के बारे में इरशाद फरमाई हैं जो अपना खात्मा कर लेते हैं। असल में ज्यादातर वो लोग के जो खुदकुशी करते हैं वो खुदकुशी के अमल से पहले गोया अल्लाह का इनकार कर चुके होते हैं। यानी खुदकुशी की जो सजा है अल्लाह के नबी ने फरमाई कि जो आदमी जिस तरीके से अपने आप को हलाक करेगा वो अबदी तौर पे जहन्नुम में उसी चीज से अजाब दिया जाता रहेगा। उसमें भी असल में बात यही लगती है कि वो बेईमान हो चुका होता है, यानी वो ये समझता है कि मेरे मालिक ने, मेरे आका ने, मेरे खालिक ने मुझ पर जुल्म किया, मुझ पर ज्यादती की, और मुझे ऐसी सूरत हाल से दो चार कर दिया जो मेरे बस से बाहर, जिसको मैं उठा नहीं सका। तो एक लिहाज से ज्यादातर खुदकुशी से पहले कुफर हो चुका होता है। इसीलिए बहुत सी रिवायतों में हम देखते हैं कि उसके लिए खुलूद फिन्नार हमेशी की जहन्नुम है, जो वैसे मुसलमानों के लिए नहीं है, वो कुफार के लिए। उसका सबब भी यही है कि गोया अकीदे के तौर पर ये मान लेता है कि मेरे रब ने मुझ पर जुल्म किया, मुझ पर ज्यादती की, और मुझ पर ऐसी तकलीफ डाल दी, ऐसी इब्तला मुझ पर डाल दी जिसको उठाने की मेरे अंदर इस्तेआत नहीं। तो अहले ईमान को ये यकीन होना चाहिए कि नहीं, अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी पर भी कोई ऐसी आजमाइश नहीं आयत करते जिसको उठाने की ताकत और वसत उसके अंदर ना। तीसरी बुनियादी बात इस हवाले से वो ये है कि अल्लाह ताला इंसानों को जो आजमा रहे हैं या उन पर मुश्किलें आ रही हैं, तो माज़ अल्लाह अल्लाह ताला दुश्मन नहीं। यानी एक जो तसव्वुर रहा है बहुत से पुराने लोगों का कि माज़ अल्लाह वो हस्ती जिसने इस कायनात को बनाया है वो कोई सैडिस्ट है, वो कोई अजियत पसंद है, और वो लोगों को तकलीफों में डालता है, मुसीबत में डालता है, और ऊपर बैठ के माज़ अल्लाह उसका तमाशा देख रहा है। तो नहीं, कुरान मजीद ये बताता है कि ऐसा नहीं है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युख्रिजुहुम मिनज़ुलुमाति इन्नूर, अल्लाह ताला वली है, अल्लाह मौला है, कारसाज है, नासिर है, हिमायती है अहले ईमान। तो माज़ अल्लाह अल्लाह ताला ज़ालिम नहीं है, अल्लाह ताला कोई अजियत पसंद नहीं है, अल्लाह दुश्मन नहीं। फिर एक बहुत अहम बात कुरान मजीद में एक जगह पर एक खास आजमाइश के हवाले से बयान हुई है कि जो तकलीफें आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, वो हमारा ईमान छीनने के लिए नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती कि हमें महरूम करें, बल्कि अगर हम गौर करें तो वो हमें नवाजने के लिए आती हैं, हमें अल्लाह के यहाँ हमारे मर्तबे को बुलंद करने के लिए आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदनी जिंदगी है उसके आगाज में एक आजमाइश आई अहले ईमान पर, और वो आई थी तहवील किबला के हवाले से। और उस मौके पर भी आप देखिए कुरान मजीद ने क्या बात फरमाई कि वमा कानल्लाहु लियुज़ीआ ईमानकुम, अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि वो तुम्हारे ईमान को जाय कर दे, तुम्हारे ईमानों को जाय कर दे, जायल कर दे, ऐसा नहीं है। मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां इसलिए नहीं आती कि हमारा ईमान जायल कर दे, हमसे सबसे बड़ी पूंजी छीन। फिर एक और जो अहम बात है, बुनियादी बात है मसाइब में, तकलीफों में, परेशानी में, कि अल्लाह ताला की तरफ से जो तकलीफ भी आती है, जो मुसीबत भी आती है, उसके ज़ैल में अल्लाह की रहमत ही पोशीदा है। ये आप देखते हैं कि अंबियाए कराम पर बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें आईं, बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें आईं, लेकिन आप देखते हैं कि उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको कितना बुलंद किया। खासतौर पर आप सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अगर कुरान मजीद में पढ़े तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से उनके भाइयों ने उनसे हसद किया और उनको जो है अंधेरे गार में डाल दिया। उसके बाद जो है वो बर्दा फरोशों ने उनको उठा लिया, फरोख्त कर दिया। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह की सारी स्कीम थी, अल्लाह ताला तो उनको नवाजना चाहते थे ना, कि वहां से उठाकर उनको जो है वो मिस्र में ले आए और वहां पर एक तरह की हाकमियत उनको दे दी। तो ये अल्लाह ताला की एक स्कीम होती है जो हम पर वाजे नहीं होती, और बहुत सी जगहों पर तो हम डिसाइफर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, कुरेद कर लेते हैं, लेकिन बहुत सी चीजों में जो हिकमत होती है वो मख्फी होती है, हम पर जाहिर नहीं होती। खुद कुरान मजीद ने ये बात फरमाई कि कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वहुवा कुर्हुल लकुम, ऐ मुसलमानों तुम पर किताल फर्ज किया गया लेकिन ये तुम्हें बहुत नागवार है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जान जोखिम में डालनी पड़ती है, जख्मी होते हो, जान जा भी सकती है, तकलीफ आती है। और उसका सबब क्या है कि आसा अन तकरहू शैअन वहुवा खैरुल लकुम, हो सकता है कि कोई चीज तुम्हारे लिए तुम्हें लगता हो कि नागवार है, तकलीफ दे है, लेकिन अपने अंजाम के एतबार से वो तुम्हारे लिए खैर हो। वह आसा अन तुहिब्बू शैअन वहुवा शरुल लकुम, इसके बरक्स भी हो सकता है कि कुछ चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं, तुम्हें पसंद आती हैं, तुम्हें खुश आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहां उसके अंदर बड़ी खैर है। और असल मसला क्या है, इंसानों का सबसे बड़ा वजूदी मसला यह है कि वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। इंसान बहुत शॉर्ट साइटेड है, बहुत दूर तक देख नहीं पाता, अल्लाह ताला के मामलात बहुत तवील होते हैं। और इस आखरत के बारे में कहा ना कि इन लोगों का मामला ये है कि ये लोग इसको देखते हैं कि बहुत दूर है और हम उसको देखते हैं कि ये बहुत करीब है। तो अल्लाह ताला की अपनी स्कीम होती है कि तकलीफ के बाद बहुत आसानी होती। आम एक फिनोमिना है, हम देखते हैं कि माँ बहुत तकलीफ से गुजरती है, बहुत कर्ब से गुजरती है। 9 माह तक बच्चे को अपने पेट में रखना और फिर जो वज़े हमल है उसकी तकलीफ गैर मामूली होती, शायद कोई मर्द भी उसको सहने की मकदरत न रखता हो, लेकिन उसके बाद बच्चे की शक्ल में जो चीज उसको मिलती है, जो अल्लाह की नेमत उसको मिलती है, तो वो सारी तकलीफ, सारी परेशानी वो भूल जाता। इस लिहाज से भी हमें देखना चाहिए कि बहुत सी तकलीफें, बहुत सी ऐसी मुसीबतें होती हैं कि जिसके ज़ैल में अल्लाह ताला बंदों को नवाजना चाहते हैं, अल्लाह ताला बंदों को बहुत कुछ देना चाहते हैं। फिर एक और बहुत अहम बात है इस हवाले से, जो उसूली बात है कि अल्लाह ताला जब बंदों को तकलीफ में डालते हैं या मुसीबत में डालते हैं, परेशानी में डालते हैं, तो बेआसरा नहीं छोड़ते, बेयारो मददगार नहीं छोड़ते, मदद करते। आप देखिए कुरान मजीद में वाकया है उम्मे मूसा का, वौहैना इला उम्मे मूसा अन औज़िईही फइज़ा खिफ्ती ही फअल्की फिल यम वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना वादूहु इलैक वजाइलु मिनल मुर्सलीन। आप देखिए पूरी स्कीम है कि एक आजमाइश में डाला उनको, एक तकलीफ में डाला, लेकिन उसके बाद कदम कदम पर सपोर्ट किया। किस तरीके से फिर वो उस महल में पहुंच गई और किस तरीके से उनकी मुर्जिया बन गई, उनको दूध पिलाने वाली बन गई, जबकि आले फिरौन नहीं समझ रहे थे कि ये खातून कौन। तो अल्लाह ताला जब तकलीफ में डालते हैं, मुसीबत में डालते हैं, तो दस्तगीरी भी फरमाते हैं, बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। और इस हवाले से जो आखिरी उसूली बात है वो ये है कि दुनिया में तकलीफ का आना, मुसीबत का आना, परेशानी का आना, ये लाजिमन अल्लाह ताला की नाराजगी का परतौ नहीं है, उसका इजहार नहीं है। और दुनिया में राहत से रहना, दुनिया में मजे करना, दुनिया में आसाइशों में रहना, ये कोई अल्लाह की रिजा का गोया इजहार नहीं है। ये बहुत अहम बात है। ये गलतफहमी हम सबको हो जाती है कि हम किसी आदमी को कामयाब होता देखते हैं दुनियावी प्लेन पर किसी भी हवाले से, तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला इनसे खुश है, अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह इनको नवाज रहे हैं। और किसी को तकलीफ में, परेशानी में, मुसीबत में देखते हैं तो ये ख्याल पैदा हो जाता है कि शायद अल्लाह ताला इनसे नाराज है। तो ये बुनियादी पर्सपेक्टिव की गलती है और कुरान मजीद इसकी इस्लाह करता है। सूरह फजर में फरमाया ना कि फअम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, कि इंसान का मामला ये है कि जब उसका रब उसको जांचता है, आजमाइश में डालता है, फअक्रमहु व नअमहु फयकूल रब्बी अक्रमन, और रब इकराम करता है, नवाजता है, नेमतें देता है, तो कहता है मेरे रब ने मेरा बड़ा इकराम किया, मुझे बड़ा नवाजा, मेरा रब मुझसे खुश है। और यही इंसान वअम्मा इज़ा मब्तलाहु, जब उसका रब उसको जांचता है, फकदर अलैहि रिज़्क़हु, उसके रिस्क को सुकेर देता है, समेट देता है, फयकूल रब्बी अहानन, तो वो कहता है कि मेरे रब ने तो मुझे रुस्वा कर दिया, जलील कर दिया। तो ये जो पर्सपेक्टिव है कि जिसको अल्लाह ने इस दुनिया में मालो असबाब दिए हैं, अल्लाह उससे खुश है, और यही नतीजा आखिरत में भी निकलेगा, और जिससे अल्लाह ताला ने यहाँ पे तकलीफ में रखा है, मुसीबत में रखा है, अल्लाह उससे नाराज है, आखिरत में भी वो ऐसा ही होगा, ये बहुत बड़ी गलती। कर्मीर में आप पढ़िए सूरह कहफ में वो जो दो बाग वालों का किस्सा बयान हुआ है, तो उसको यही जाम पैदा हो गया था कि मेरे रब ने मुझे जहां बाग दिया है वो ऐसा बाग है जिसमें नहर भी बह रही है, उसमें हर मौसम में फसल आता है, और उसने कहा कि अव्वल तो है ही नहीं, वमा अज़ुन्नु सात कायमा, अव्वल तो मेरा गुमान नहीं है कि दुनिया कभी खत्म होगी या दुनिया का कभी खात्मा होगा, सा कायम होगी, लेकिन वलय रुदितु इला रब्बी, अगर मुझे लौटाया भी गया मेरे रब की तरफ, लअजिदन्ना खैरन मिन्हा मुनक़लबा, तो वापस पलट के मुझे इससे बेहतर मिलेगा। ये जो तसव्वुर है ये गलत है, ऐसा नहीं है। जिसको दिया है अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला उसको भी जांच रहे हैं, उसको भी आजमाइश में रखा है, और जिससे छीना है, जिससे लिया है, उसको भी आजमाइश में रखा है। और एक खास लिहाज से आप देखें तो जिसको दिया है उसकी आजमाइश ज्यादा सख्त है। सहाबा किराम से हमें इस तरह का जुमला मिलता है, उन्होंने कहा कि बुलीना बिस्सर्रा फसबर, कि हमें जांचा गया, हमारी आजमाइश की गई बुरे हालात के जरिए, तकलीफों के जरिए, लेकिन हमने सबर किया, हम साबित कदम रहे। लेकिन अब मामला क्या है कि बुलीना बिस्सर्रा, अब अच्छे हालात के जरिए, आसाइश के जरिए, फुतुहात के जरिए, गनीमतों के जरिए हमें नवाजा जा रहा है, लेकिन फलम नस्बिर, लगता है कि अब हम साबित कदम नहीं रहे। तो मालदारी की जो आजमाइश है वो शायद ज्यादा बड़ी आजमाइश है। इसीलिए मशहूर है इमाम अहमद बिन हम्बल अले रहमा, इमाम अहले सुन्नत, जब वो जो मिहना उन पर आई, जब वो इंक्विजिशन का शिकार हुए खल्के कुरान के मसले पर, और बेतहाशा उनको मार लगाई गई, प्रोसिक्यूट किया गया, ऐसी मार जिसके बारे में ये ज़र्बुल मसल किताबों में लिखी हुई है कि ऐसी मार लगाई कि अगर हाथी पर भी पड़े तो वो भी बिलबिला उठे, लेकिन वो उसको सह गए और अपने मौकफ से नहीं हटे। लेकिन उसके बाद जब खलीफा बदल गया और वो अहले सुन्नत के मौकफ पर आ गया और खल्के कुरान के अकीदे से हट गया और उनको नवाजा, उनको खलात दिया, उनकी तरफ जो अशरफियों का तोड़ा भिजवाया, तो वो देखकर रोने लगे और कहा कि ये आजमाइश ज्यादा बड़ी आजमाइश है। तो माल की आजमाइश ज्यादा बड़ी आजमाइश होती है तकलीफ की आजमाइश की निस्बत। तो एक तो हमने ये बुनियादी बातें समझने की कोशिश की है कि आजमाइश, तकलीफ, परेशानी आकर रहेगी, इससे कोई मफद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आएगी तो कुव्वत से ज्यादा नहीं आएगी, इस्तेताअत से ज्यादा नहीं आएगी। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला जो तकलीफ में डाल रहे हैं, मुसीबत में डाल रहे हैं, तो माज अल्लाह दुश्मन नहीं है, सैदिस नहीं है, अजियत पसंद नहीं है, वो अल्लाह ताला जो है वो वली है। और फिर ये है कि ईमान जायल करने के लिए नहीं आती तकलीफें, और फिर हर तकलीफ में कोई ना कोई मख्फी मेहरबानी पोशीदा है, और फिर मदद भी करते हैं अल्लाह ताला, बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। और आखिरी बात यह है कि तकलीफ या मुसीबत नाराजगी की अलामत नहीं। अब यह है कि ये तकलीफें या परेशानियां जो आती हैं, इसमें हमारे लिए फायदे का एलिमेंट क्या है, इसमें फवायद क्या है। तो एक बहुत बड़े आलिम है इज़्ज़ुद्दीन इब्ने अब्दुस्सलाम, सुल्तान उलमा इनका लकब है। ये तकरीबन छठी सदी, छठी और सातवीं सदी हिजरी के आदमी है। 577 हिजरी में इनकी पैदाइश है और 660 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। गैर मामूली आदमी थे, मुफस्सिर थे, फकीह थे, और बहुत कम लोग होते हैं कि जो एक से ज्यादा फिक में बड़ी महारत पैदा करें, इमामत के मनसब पर फायज। तो ये शाफी थे, लेकिन मालिकी फिक में भी इनका बड़ा मतबा है, बड़ा ऊंचा मकाम है। तो इन्होंने एक जगह कुछ फवायद नकल किए कि तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां जो आती हैं, हम तो समझते हैं ना कि ये एक तकलीफ लाहक हो गई। कहते हैं कि इंसान को चाहिए, मोमिन को चाहिए कि उसके अंदर भी देखे कि मेरे लिए क्या क्या फवायद है। तो एक जगह उन्होंने 16-17 फवायद नकल किए हैं, तो जो बाकी वक्त है उसमें इख्तिसार के साथ ये इमाम साहब ने फवायद नकल किए हैं उसका हम थोड़ा सा जायजा दे लेते। पहली बात वो कहते हैं कि मारिफत इज्जत रुबूबिया वक्तहरिहा, कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे इंसान के अंदर अल्लाह ताला की जो रुबूबियत है, अल्लाह का जो रब होना है, उसका जो खालिक व मालिक होना है, उसका जो जब्बार व कहार होना है, उसका तासुर वाज़ह होता है। वही बात कि हम किसी के बस में हैं, हम खुद मुख्तार नहीं है, हम पर एक मालिक है। जो कारिमीत कहते हैं सूरह वाकिया के अंदर कि आखिर में कहता है कि अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि इनकुन तुम गैरा मदीनी, अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम किसी के बस में नहीं हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम ऑटोनोमस हो, तो तर्जिउनहा इनकुन तुम सादिकीन, हम तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे अजीज, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, उसकी जान लेके जा रहे हैं, लौटा लो अगर लौटा सकते। पता लगता है कि नहीं, रब है, खुदा है। अगर तकलीफ ना आए, मुसीबत ना आए, तो इंसान सरकश हो जाता है। जो करमवीर ने कहा है ना, जो सैयदना इब्राहिम का मुकालमा जिस बादशाह से हुआ कि उसके अंदर सरकशी क्यों पैदा हो गई, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, फिरौन के अंदर क्यों सरकशी पैदा हो गई, रईस अली मुल्क उमिर मुसल, उसको लगा कि मेरे ऊपर कोई और बदतर हस्ती नहीं। तो एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह ताला के रब होने का इदराक होता। और दूसरा फायदा क्या है इसके बरक्स है, वो कहते हैं मारिफतु जिल्लुल उबूदिया व कसरिहा, अपने बंदे होने की जो जिल्लत है, उसकी जो तजलील है, उसकी जो पस्ती है, उसका इजहार होता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में फरमाते थे ना कि नासियती बियदिक, ए रब मेरी पेशानी के बाल तेरे हाथ में है। ये इंसान को उस वक्त पता लगता है जब तकलीफ आती है, जब परेशानी आती है, जब मुसीबत आती है, वरना तो इंसान फिरौन बना रहता। जो मौलाना रूम ने कहा है ना कि नफ्स माहम कम तरस फिरौन नीस, मेरा नफ्स भी फिरौन से कमतर नहीं है, वो भी अपनी खुदाई का दावा करता है, बस फर्क ये है कि ऊरा ऑन ईरा ऑन नीस, उसके आवान व अंसार है, मेरे आवान व अंसार नहीं है। वरना सरकशी में उसके अंदर से भी ये आवाज आती है, अना रब्बुकुम अला, लेकिन जब तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, तो फिर गोया इंसान औकात में आ जाता है, उसको अपना बंदा होना याद आ जाता है। तीसरा फरमाते हैं वही बात कि अल इखलास इल्लल्लाह, कि इंसान के अंदर इखलास पैदा होता है, खुलूस पैदा होता है। और ये इखलास मुशरिकीन मक्का में भी पैदा हो जाता था, खुद कुरान मजीद ने उसका बयान नकल किया है कि फैजा रकीबू फिलफुल की दाउल्लाह मुखलिसीन अलउद्दीन, ये मुशरिकीन जब किसी कश्ती में सवार होते हैं और कश्ती डोलने लगती है, टर्बुलेंस आती है, तो क्या होता है कि उस मौके पर तमाम माबूदों को भूल जाते हैं, दाउल्लाह मुखलिसीन अलउद्दीन, एक अल्लाह को पुकारने लगते हैं, अपनी इताअत को उसके लिए खालिस करते हुए। तो पहले उससे होता है कभी इस दर पे जा रहे हैं, कभी उस दर पे जा रहे हैं, लेकिन जब ऐसी टर्मिनल कोई इलनेस आती है, कोई तकलीफ आती है, तो इंसान मुखलिस हो जाता है, अपने रब को पुकारने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है तकलीफ का, मुसीबत का। चौथा उसी का अक्स है अल इनाबतु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू, अल्लाह की तरफ इंसान का झुकना। कर्मीत की आयत इमाम साहब नकल करते हैं कि वैजा मसल इंसान जुर्दुन दा रब्बहु मुनीबन इलैही, जब अल्लाह ताला को इंसान, अल्लाह ताला इंसान को कोई जरर पहुंचाते हैं, किसी जरर का मजा चखाते हैं, वो अल्लाह को पुकारता है और अल्लाह की तरफ इनाबत करता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है। अल्लाह की तरफ झुकता है। फिर अगला पहलू क्या है, कहते हैं अत तज़र्रु व दुआ, कि इंसान जारी करता है, इंसान अल्लाह की जनाब में दुआ करता है, रुजू करता है। अम्मन युजीबुल मुस्तज़ा इज़ा दआहू, इंसान पर जब इस्तिरार आता है तब वो अल्लाह को पुकारता। हम सबको इसका तजर्बा है कि जब बिल्कुल फंस जाते हैं, जब लगता है कि असबाब बिल्कुल जवाब दे गए हैं, तो फिर उस वक्त जब हम अल्लाह को पुकारते हैं गिड़गिड़ा के, तजर्रो करके, जारी करके, और ये इबादत का जौहर है, ये इबादत का मगज है, तो ये तकलीफ कितनी बड़ी चीज है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहा करते थे कि दो मकरूह चीजें हैं लेकिन वो बड़ी ही बहुत ही अच्छी, अल फकर वल मौत, ये फकर और मौत। फकर भी इंसान को बाज़ोकात अल्लाह से करीब कर देता है, और मौत भी शाहदरा है इंसान को अल्लाह से करीब करने। तो एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि तकलीफ, मुसीबत, परेशानी इंसान के अंदर तजर्रो पैदा करती है, जारी पैदा करता है। फिर कहते हैं कि एक और फायदा क्या है, अल हिल्म मिम्मन सदरत अन्हुल मुसीबा, जिसकी तरफ से तकलीफ पहुंचे, दुनिया में जाहिर बात है कुछ तकलीफें होती हैं जिसको कहते हैं नेचुरल इविल, जिसका सबब इंसान नहीं होता, कोई टॉर्नेडो है, कोई जलजला है, कोई सैलाब है, इसमें बजाहिर कोई इंसान या ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन बहुत सी तकलीफें, बहुत से अलम, बहुत सी परेशानियां ऐसी होती हैं कि जो इंसानों की वजह से आती हैं। तो कहा कि एक फायदा यह भी है कि जब इंसानों से हमें तकलीफ हो, इंसानों से हमें जजर पहुंचे, तो एक बड़ा हमें फायदा उससे हासिल होता है कि हम उन लोगों के साथ नरमी करें, हम उनके साथ रहमत और शफकत का मामला करें, हम उनके साथ दरगुजर का मामला करें। तो ये भी एक फायदा ही है ना कि किसी की तरफ से आपको तकलीफ पहुंची है और आपके लिए खैर कमाने का मौका बन गया कि आप उसको माफ कर दें, आप उसके साथ दरगुजर का मामला करें। फिर एक और कहते हैं, सातवां फायदा कहते हैं कि अल अफ अन जानीहा, ये भी उसी से मिलती जुलती बात है कि जो आपको ज्यादती कर रहा है, जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, जो आपको जरा पहुंचा रहा है, उसको माफ कर देना, उससे दरगुजर करना। जब अल्लाह ताला की बहुत ही जो है मुकर्रब बंदों का तस्करा आया तो वहां कहा कि वल आफीना अन्नास वल काज़िबीन अल गैज वल आफीना अन्नास, ये लोग कौन है जो गुस्से को घोंटते हैं और लोगों से दरगुजर करते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है जो इंसान को मुसीबत का, तकलीफ का पहुंचता है। फिर आठवां कहते हैं सबब, बहुत बड़ा फायदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी इंसान को कोई भी अतिया, कोई भी खैर सबब से बढ़कर नहीं मिली। सबसे बड़ी खैर जो इंसान को मिलती है वो क्या है, वो सबर की सलाहियत। और सबर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कुरान मजीद कहता है कि इन्नमा युवफ़ साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, कि जो साबिर लोग हैं उनको तो उनका अजर दिया जाएगा बगैर किसी हिसाब। कुरान मजीद में कई मकामात ऐसे हैं कि जहां अहले जन्नत का वो वाहिद सबब जिसकी वजह से वो जन्नत में दाखिल होंगे वो सबब एक ऐसा वस्त जो उनकी पूरी जिंदगी पर मुहित। सूरह फुरकान में फरमाया उलाइका युजज़ूनल गुरफता बिमा सबर, तो उनको जन्नत के बाला खाने दिए जाएंगे उनके सबर की वजह से। फिर सूरह दहर में, सूरह इंसान में फरमाया वह जजाहुम बिमा सबरू जन्नतों व हरीरा, उनका रब उनको बदला देगा उनके सबर की वजह से। क्या बदला देगा, रहने के लिए जन्नत देगा और पहनने के लिए रेशम देगा। तो क्योंकि पूरी जिंदगी का उनवान सबर है, और तकलीफ, परेशानी, जब मुसीबत आती है तो इंसान को सबर का मौका मिलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आजबल अमरुल मोमिन, मोमिन का मामला बहुत ताज्जुब अंगेज है, बहुत खूबसूरत है, बहुत पिक्यूलियर है। क्यों, इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर, उसके लिए उसका हर मामला खैर ही खैर है। कैसे खैर है, कि कहा कि इन असाबत हु जर्रा सबर फकान खैरन लहु, अगर उसको कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो सबर करता है, तो ये उसके हक में बेहतर है। वहीन असाबत सर्रा शकर फकान खैरन लहु, और जब उसको कोई खुशगवार चीज पहुंचती है, कोई अच्छी चीज मिलती है तो वो शुक्र करता है, तो ये उसके लिए बेहतर। तो हर मामला उसके लिए खैर ही खैर का है। तो तकलीफ और परेशानी इंसान के लिए सब्र का मौका भी फराहम करती है। और इमाम साहब अगली बात करते हैं कि एक खास मानों में शुक्र का मौका भी फराहम करती है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाया करते थे कि जब भी मुझ पर कोई तकलीफ आती है मैं उस तकलीफ में भी तीन खैर के पहलू देखता हूं। पहला शुक्र का और खैर का पहलू यह है कि जितनी तकलीफ आई उससे ज्यादा नहीं आ गई। आप देखते हैं ना कि एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लाखों का हो गया, लेकिन और हड्डियां भी टूट गई लेकिन जान बच गई। तो हम ये कहते हैं ना, देखो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि जान बच गई, चाहे हड्डियां भी टूट गई चाहे गाड़ी भी तबाह हो गई। तो अब ये भी एक पर्सपेक्टिव है ना कि भाई जितनी तकलीफ आई उससे ज्यादा भी आ सकती थी ना। तो कहा कि कितनी बड़ी बात है, कितने ही बुजुर्ग हैं जब कहीं ऐसा हुआ कि उनकी आंखें जाये हो गई और लोग आए उनसे पूछा देने, उन्होंने कहा कि अल्लाह कितना शुक्र है कि आंखें ही गई हैं, कान काम कर रहे हैं, ये मैदा काम कर रहा है, दिल काम कर रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं। तो ये एक पर्सपेक्टिव है कि हम पर जो तकलीफ आए उसमें भी एक शुक्र का पहलू। दूसरा इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि दूसरा शुक्र का पहलू ये है कि ये मेरे दुनियावी मामले में आई है, किसी दीनी मामले में नहीं आई। औलाद चली गई, खेत को जो है आग लग गई, कोई भी है, लेकिन ये मामला क्या है, ये मेरी दुनिया पर आया, दीनी मामले पर नहीं आया। इसीलिए अल्लाह के नबी ये दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्म ला तजअल मुसीबतना फी दीनिना, कि अल्लाह तू हमारे दीन के मामले में हम पर कोई मुसीबत ना लाना। दुनिया की तकलीफ तो आजी है ना। और तीसरी बात ये ना, अब्दुल्ला अपने बात फरमाया करते थे कि शुक्र है कि ये दुनिया में आई है, ये आखिरत में नहीं आई। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे ना कि अल्लाहुम्मा अजअल हयात ज़ियादतन ली फिन कुल्ली खैर, ए अल्लाह तू मेरे लिए जिंदगी को बना दे हर खैर में इजाफे का बायस, वजअल मौत राहतन ली मिन कुल्ली शर, ए अल्लाह तू मौत को मेरे लिए हर शर से आजादी और राहत का सामान बना दे। यानी बस मौत आखिरी तकलीफ हो जो पहुंचे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो मरज़ुल वफ़ात की कैफियत थी, बार बार गशी तारी हो जाती थी, तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत कर्ब का शिकार होती, वा अबता ये कहती कि हाय मेरे अब्बा जान कैसी तकलीफ उन पर आई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके फरमाया कि तुम्हारे बाप पर, तुम्हारे अब्बा पर आज के दिन के बाद कोई तकलीफ नहीं आई, बस ये आखिरी तकलीफ है ना, आखिरत तो राहत ही राहत है। वलल आखिरत खैरुल लक मिनल उला, तो ये भी क्या है, एक खास मानों में इमाम साहब भी कह रहे हैं कि इसमें शुक्र का एलिमेंट भी होता है कि तकलीफ जितनी आई उससे ज्यादा नहीं आई, आई है तो दुनियावी मामले में आई है, दीनी मामले पे नहीं आई, और दुनिया में आई है आखिरत में नहीं आई। फिर इमाम साहब फरमाते हैं कि जो एक बहुत बड़ा फैज है, बहुत बड़ा फायदा है तकलीफ का, मुसीबत का, कि वो इंसानों का को पाक कर देता है, इंसानों को का तज़किया कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को जो तकलीफ पहुंचती है, जो आजमाइश उस पर आती है, यहां तक कि आपने कहा कि जो बुखार उसको आता है, जो कांटा भी उसको चुभता है, उसके जरिए अल्लाह ताला उसके गुनाहों को झाड़ देते हैं। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं, अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने पास बुलाएं तो बिल्कुल पाक करके बुलाएं, तो बहुत तकलीफ सहते हैं मौत से पहले। ये भी एक तसव्वुर गलत है, इसको हमें सही करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदतना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने मरज़े वफात में सख्ती के आने को मुज़िर समझना छोड़ दिया जब मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरज़े वफात देखा। ये आज हमारे यहां भी ये तसव्वुर पाया जाता है कि देखिये फला आदमी बड़ा अल्लाह वाला था, बड़ा नेक था, बिल्कुल आसानी से चला गया, यानी कोई तकलीफ नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, कोई मुसीबत नहीं आई, और फला आदमी बड़ी मुश्किल में गया है, बहुत तकलीफ में आखिरी मरज़े वफात गुजारे हैं, तो लगता ये है कि जैसे कोई बड़ा गुनाहगार आदमी था। तो सैयदा कहती है कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा मरज़ुल वफात में, मैंने अपने तनाज़ुर को ठीक कर लिया। रसूलुल्लाह पर गशी आई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सकरातुल मौत आई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सख्ती आई है, तो जाहिर बात है रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में तो बावल भी नहीं हो सकता ना, सोच भी नहीं कोई सकता कि माज़ अल्लाह कोई आपको सजा दी जा रही है किसी कोताही की, किसी गुनाह की। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, तो ये तसव्वुर करना कि जिस पर तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, अल्लाह ताला उससे नाराज है, इस वजह से वो उसकी जान मुश्किल से निकलती है। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, जो तकलीफ आ रही है, जो परेशानी आ रही है, वो इसलिए आ रही है ताकि अल्लाह ताला, अंबिया का मामला दूसरा है, बाकी अहले ईमान के मामले में क्या है कि अल्लाह ताला उनको पाक करना चाहते हैं, चाहते ये हैं कि बिल्कुल पाक साफ करके अपने पास लेकर आए। फिर इमाम साहब फरमाते हैं कि और जो फवायद हैं कि इससे फायदा ये होगा, कहते हैं रहमतु अहलिल वला व मुसाअदतिहिम। इंसान पे जब तकलीफ आती है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो अहले बला जो है उनके लिए रहमत का जज्बा पैदा होता है। मुसीबत जो है, मुसीबत जो ज्यादा लोग हैं उनके लिए एम्पथी पैदा होती है। रमजान के रोजों की जब फजीलत बयान की जाती है तो एक फजीलत ये भी बयान की जाती है ना कि आमतौर पर जो पेट भरे लोग होते हैं, उमरा होते हैं, उनको कभी फाके का तजर्बा नहीं होता, तो रमजान में उनको भी कुछ अरसे के लिए भूख प्यास बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो उनके अंदर हम एहसासी पैदा होती है, एम्पथी पैदा होती है। तो इसी तरीके से जब इंसान पर कोई आजमाइश आती है, तकलीफ आता है, फाका आता है, तो इंसान के अंदर हम एहसासी पैदा होती है, और जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए हम दर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। क्योंकि इंसान दो तरह के हैं दुनिया में, या वो लोग हैं कि जो आफियत से हैं, और एक वो लोग हैं जो मुब्तला हैं आजमाइश में। तो हमें चाहिए कि जो अहले आफियत हैं उनको देखकर भी उनके साथ भी रहमत का मामला करें, और जो अहले इब्तला हैं उनके साथ भी रहमत और शफकत का मामला करें। फिर एक और जो फायदा है वो ये है कि बहुत से लोग जिन पर तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो वो लोगों के लिए इबरत का सामान बन जाते हैं। यानी ऐसा मामला नहीं होता कि उनकी कोई कोताही है, उनकी कोई खराबी है, लेकिन उन पर आजमाइश आती है और वो ऐसा सबर करते हैं कि कई लोगों के लिए नमूना बन जाते हैं। अब सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम, वो तो अल्लाह के नबी है, मासूम है, उनकी तो कोई कोताहियां नहीं कि अल्लाह उनको कोई सजा दे रहा है या गुनाहों से पाक कर रहा है, लेकिन जो सबर उन्होंने किया तो वो ज़र्बुल मसल बन गया। तो हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो आजमाइश में डाले जाते हैं और वो उससे ऐसे निकलते हैं कि उनको देखकर कई लोगों का ईमान ताजा हो जाता है। और हमें भी इसका तजर्बा है कि आप देखते हैं कि हम बाज़ोकात किसी मुब्तला आदमी को देखकर जो अल्लाह की याद आती है, अल्लाह का जो चेता आता है, वो किसी बात से भी नहीं आता। इसीलिए अल्लाह के नबी ने हमें दुआ सिखाई है। हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हुए हैं, कोई नाबीना आया, कोई माजूर शख्स देखा, कोई फटे हालों में देखा, तो अल्लाह के नबी ने हमें दुआ सिखाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फज़्ज़लनी आला खैरिम मिम्मन खलक तफ़ज़ीला। तो कुल शुक्र कुल तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे उस इब्तला से बचाया जिसमें अल्लाह ने तुम्हें मुब्तला किया है, और अपनी मखलूकात में से कितनों से ज्यादा फजीलत दी। तो ये भी एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, ब्लेसिंग है तकलीफ की, परेशानी की, कि इससे हमें अल्लाह की याद आती है, हमें यह इबरत होती है। तो वही बात कि नेमत और शुक्र की जो है हमें कदर मालूम होती है। जब तक कोई चीज हमसे रुखसत ना हो, कोई नेमत हमसे जाती ना रहे, उस वक्त तक उसका एहसास नहीं होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में लोगों की अक्सरियत धोखे में है, मगबून फीमा कसीर मिनन्नास, अस्सेहत वल फराग, सेहत और फरागत। जब ये रुखसत होती है, जब ये जाती है, तब इंसान को पता लगता है कि कितनी बड़ी नेमत है जो मुझे हासिल थी। तो बीमारी आती है तो सेहत की अप्रिसिएशन होती है, फकर आता है तो गिना उसकी जो तवंगरी है उसका ब्लेसिंग होना हम पर वाजे होता। और फिर फरमाया कि एक और बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह ताला ने जो आखरत में बहुत बड़े बड़े वादे किए हुए हैं उन लोगों के साथ जिनको अल्लाह ताला आजमाते हैं, मुसीबत में डालते हैं, जो उनके साथ वहां पर अल्लाह ताला ने जो है वादे किए हुए हैं, जो कुछ अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं उनको नवाजूंगा, वो एक बहुत बड़ी चीज है। और जो कुरान मजीद ने भी कहा है ना कि अल्लाह ताला आजमाते हैं, जांचते हैं, लेकिन खैर भी रखा है बहुत ज्यादा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्ना इज़मिल जज़ा मा इज़मिल बला, जितनी बड़ी आजमाइश होगी, जितनी बड़ी तकलीफ और परेशानी होगी, उसी के बकदर अजर भी होगा, उसी के बकदर अल्लाह ताला नवाजेंगे भी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिससे मैं उसकी दो महबूब चीजें ले जाऊं और फिर वो सब्र करे तो उसकी जज़ा जन्नत के सिवा कुछ नहीं। उससे मुराद कुछ लोगों ने कहा कि आंखें हैं, ये कोई भी महबूब चीज, इंसान की औलाद उसको बहुत महबूब होती है, अल्लाह ताला उससे ले जाए तो अल्लाह ताला, अगर बंदा सब्र करे तो अल्लाह ताला नवाजते हैं। और हम सबको इसका तजर्बा है कि इंसान पर तकलीफ आए, मुसीबत आए और इंसान उस पर सब्र करे तो उसको लगता है कि जैसे अल्लाह ताला ने उसको नई जिंदगी दी। एक रिवायत में इस तरह के अल्फाज आते हैं कि जब बंदे पे तकलीफ आती है, आजमाइश आती है और वो सब्र करता है तो हम उसके गोश्त को एक नए गोश्त से, उसके खून को एक नए खून से बदल देते, उसका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है और लोगों को इसका एहसास भी होता है, लगता ये है कि नई जिंदगी मिली है उन्हें, वो बिल्कुल बदल जाते हैं। तो आजमाइश इंसान को बदल देती है, इंसान को एक बेहतर आदमी बना देती है, एक रूहानी शख्सियत बना देती है। और आखिरी बात जो इमाम साहब ने यहाँ फरमाई है, जो 16वीं बात है, वो ये है कि जो मसायब और शदायद हैं इंसान को फखर से, शेखी से, घमंड से बचाते हैं। वही बात है कि इंसान पर अगर तकलीफ ना आए, मुसीबत ना आए, परेशानी ना आए तो इंसान सरकश हो जाता है। मीर ने कहा ना कि कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा, इंसान सरकश हो ही जाता है। अब रहा मुस्तगना, जब वो देखता है कि मुस्तगनी है और किसी के जो है वो बस में नहीं है बल्कि अपने खुद मुख्तार है तो घमंड पैदा होता है। इमाम साहब कहते हैं कि तकलीफों से, मुसीबतों से, परेशानियों से आदमी केंडे में आ जाता है, घमंड खत्म होता है, गुरूर खत्म होता है। और आखिरी 17वां जो फजीलत वो बताते हैं, वो फरमाते हैं कि इससे अल्लाह ताला की रिजा हासिल होती है, वो रिजा जो अल्लाह ताला की रिजवान का मूजिब बनती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, जब अल्लाह ताला कुछ लोगों से मोहब्बत करते हैं तो उनको आजमाइश में डालते हैं। वही बात हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि शायद नाराज है तो जांच रहे, आजमाइश में डाल रहे, कहा नहीं, इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम तो उनको आजमाइश में डालते हैं, इब्तला में डालते हैं। तो कहा कि फमन रजिया फलहु रिजा, जो अल्लाह से राजी रहते हैं, राजी व रजाए रब होते हैं, अल्लाह के फैसलों पर खुश रहते हैं, अल्लाह ताला की रजा उनको मिल जाती है और अल्लाह की रजा से बड़ी चीज कोई नहीं है। व रिजवानुम मिनल्लाही अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। जब अहले जन्नत जन्नत में पहुंच जाएंगे तो अल्लाह उनसे पूछेंगे कि अब तुम खुश हो, राजी हो, कहेंगे अल्लाह हम कुछ से राजी कैसे ना हो, तूने हमें वो कुछ दिया जो किसी को नहीं दिया, जन्नत दे दी, हर राहत दे दी, हर नेमत दे दी। कहा कि नहीं, इससे बड़ी भी एक नेमत है। तो लोग हैरान होंगे क्या नेमत है, तो अल्लाह फरमाएंगे कि आज के दिन मैं तुमसे राजी हो गया, आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूं, ये सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह की रजा का इलाज। तो कहा कि जो तकलीफ में, मुसीबत में, आजमाइश में अल्लाह से राजी रहता है, खुश रहता है, अल्लाह उससे राजी हो जाते हैं। फमन सखिता फलहु सखत, और जो नाराज हो जाता है अल्लाह से गुस्से हो जाता है, शिकवा शिकायत करता है, तो कहा कि फिर वो अल्लाह की नाराजगी की लपेट में आ जाता है। तो ये कुछ फवायद थे जो इमाम इज़्ज़ुद्दीन इब्ने अब्दुस्सलाम ने बयान किए हैं कि तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें, इनके अंदर भी हमारे लिए बहुत सा खैर है, बहुत सी भलाइयां हैं, बहुत सी नेमतें हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और महसूस करने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।